अब अगली आयत में, आयत 187 में एक अहद की तरफ बात की। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना अज़्म, बुलंदी को कहते हैं, लिखना ये भी, अज़्मुल उमूर है ना, अज़्म बुलंदी को कहते हैं। तो फिर अज़्म से मुराद बुलंद इरादे, जिसका आपके हाई राइजन्स और ऊंची सोचे, मतलब तुम अपना किरदार बड़ा रखो, इखलाक अच्छा रखो, बदतमीज़ी के जवाब में बदतमीज़ी ना करो। दलील है तो नरम जुबान से दे दो, वरना खामोश रहो, क्योंकि जब कोई खामोश होता है ना तो उसका जवाब आसमानों से आता है। हज़रत आयशा खामोश थी तो अल्लाह ने कुरान पाक में 20 के करीब आयतें नाजिल कर दी। बीबी मरियम खामोश थी तो अल्लाह ने गोद के बच्चे को बुला दिया। और हज़रत यूसुफ खामोश थे तो घर का एक बच्चा बोल उठा। अगर हम खामोश रहना सीख गए तो हमारा सब्र खुद मुखालफों के ऊपर पड़ेगा। शर्त एक है कि अपने ऊपर सब्र रखें। मैंने नहीं बोलना, अभी मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं कि मैं अपनी बात मनवा सकूं। देखिए, दीन जो कुर्बानियां मांगता है ना, उसमें सबसे पहली कुर्बानी इज्जत की कुर्बानी होती है। आपको पता है कि आप सच्चे हैं, फिर भी बन जाए झूठे। हदीस में आता है, जिस बंदे ने झगड़े से बचने के लिए अपने आप को पीछे डाल दिया, अल्लाह उसको ज़रूर इज्जत देता है। आपकी इज्जत कोई कम कर ही नहीं सकता, अल्लाह देता है। बतो इज्जो मंतशा बतो जिल्लो मंतशा। और जो लोग आज अल्लाह के लिए इज्जत की कुर्बानी नहीं दे सकते, कल वो जान की कुर्बानी कैसे देंगे? तो शहादत सिर्फ जान से नहीं होती, इंसान की इज्जत से भी होती है। तो आगे अल्लाह ताला इनकी कुछ खियानतों का तस्करा फरमाते हैं। आइए ज़रा इसको देखते हैं। आयत 187, वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब। और याद करो वो वक्त जब के अल्लाह ने इन लोगों से एक कौलो इकरार लिया था जिनको किताब दी। अहले किताब की तरफ इशारा है। क्या कहा था? नंबर एक लिख लीजिए इसके ऊपर, लतुबैयिनुन्ना हो। वन, अलबत्ता तुम ज़रूर ज़रूर इसको लोगों के सामने रखोगे। हु के आगे लिख लीजिए तौरात, और तौरात का वो हुक्म जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में था। दोहराती हूँ, लाम ताकीद का है, तू भई यी नो नहु। देखिए कितनी शब्दें हैं, जितने शब्द किसी लफ्ज में आए ना उतने एम्फेसाइज है। जरूर रस जरूर तुम इसको लोगों के सामने वाजे करोगे, वला तक तुमू नहु, और तुम इसको बिल्कुल भी नहीं छुपाओगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का आना, आपका दुनिया में आना, इस्लाम का आना, ये सब कुछ तुम ज़रूर ज़रूर बताओगे। अब आज देखिए कि आज के लोगों ने इसको बताया हुआ है कि छुपाया हुआ है। अगर छुपाया ना होता तो आज इतने लोग इधर उधर ना भटक रहे होते। अल्लाह के नबी की सिफ़ात, आपका नाम, आपके सहाबा की बातें, सब कुछ तौरात में मौजूद थी। इवन अभी बिगाड़ के बावजूद भी तौरात में ऐसे इशारे मौजूद हैं कि जिससे ये पता चलता है कि दीन इस्लाम सच्चा नबी और ये सब होगा। तो गोया के असल पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, उसमें तब्दीलियां ना करना। लेकिन लोगों ने क्या किया, फनबज़ूहु वरा ज़ुहूरिहिम, तो उन्होंने इस अहद को पसे पुश्त डाल दिया। बिहाइंड देयर बैक्स वी डोंट केयर, हु केयर्स। और किया क्या, वश्तरो बिही समनन कलीला, और इसकी बड़ी हकीर सी कीमत वसूल की। कोई बात नहीं, फबी समा यश्तरून, तो बहुत ही बुरी चीज़ है जो वो इसके बदले में हासिल कर रहे हैं। वो ही ख्यानत है जो पीछे पड़ा, छुपा लिया, दुनिया के फवायद ले लिए, थोड़ा सा जाह ले लिया, थोड़ा सा माल ले लिया, कहीं बड़े बन गए, कहीं कुछ हो गए। इखलाकी पस्ती का तस्करा है इल्म वालों की, इल्मी ख्यानतों का बयान है। यहूद का नाम लेकर आज मुसलमान दीनदारों को बताया गया कि तुम इन रवैयों से बच जाओ। यहाँ जो लफ्ज़ है ना वरा ज़ुहूरी, हम इसको ज़रा सामने रखते हुए एक मिसाल ज़हन में रखिए। देखिए, अल्लाह किसी को इल्म देता है, दीन देता है, आप इसको सोचिए कि इसका एक वज़न होता है ना, हर बंदे की बात का एक वज़न होता है उसके इल्म के मुताबिक। इल्म वाला बात करेगा, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसकी बात कितनी पते की, चाहे वो सीधे सीधे लफ्ज़ हो। और कम इल्म वाला बड़ी बड़ी बातें याद करके भी सुना देगा ना, पढ़ के भी सुना देगा, तो उसका वज़न नहीं होता। असल वज़न होता है बंदे के अंदर इल्म का। अब आप सोचिए कि एक डिब्बा है, चले ऑयल का डिब्बा है, 5 किलो का, 5 किलो का डिब्बा आप रस्सी के साथ बांध के दूसरी तरफ फिर 5 किलो ही डाल दें, दो डब्बे 5-5 किलो के डाल के आप किसी की गले में वो रस्सी डालें, तो क्या होगा? उसके बोझ से गर्दन आगे झुकेगी ना। अब इमेजिनेशन में आप खुद लाएं, ठीक है, दोनों सिरे आगे हैं तो गर्दन आगे झुकेगी। अब आप बिल्कुल तरतीब चेंज कर दें, उस रस्सी को पीछे की बजाय आगे से उसके पीछे कमर की तरफ डाल दें, वो 5 और 5 किलो, तो गर्दन अकड़ेगी ना। ये फर्क है, जो इल्म को आगे रखते हैं ना, यानी अमल करते हैं उस पे, उनके अंदर आजजी आती है, झुकाव आता है, नरमी आती है। और जो इल्म को पीछे डाल देते हैं ना, वरा जुहूरिहिम, तो अकड़, कंधे उचके हुए, और ऐसे लगेगा बड़ी शान वाले लोग हैं। जिन कौमों ने अल्लाह के हुक्मों को पीछे रखा अकड़ गए, और जिन्होंने आगे रखा अमल किया आजजी आई। यहूद के उलमा के अंदर जो सिफात थी वो हम देख ही रहे। अब जब ऐसे लोग जो होते हैं उनका हाल क्या हो जाता है, करते कराते कुछ नहीं और चाहते कहें कि तारीफें तो मेरी ही हों। आगे इसी का तذکرہ ہے آیت 188 میں، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، آپ ان کے بارے میں خیال بھی نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، جس کو آپ لکھ لیجیے اپنے زوم میں بڑی چیز ہے، ہم تو بہت بڑے ہیں۔ اور دوسری ان کی خامی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور دوسرا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ اس میں تمام ان دینداروں کا تذکرہ ہے کہ جن کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، بڑی بڑی شخصیات ہیں، آپ صاحب کے لاکھ کے لگائے، حضرت قبلہ و کعبہ و مرجع و ماوا، حضرت عالی شان، مرقدہ فلاں فلاں، اور پھر ان کی کوئی نام لیا جاتا ہے۔ انہیں تو جدی پشتی بڑے 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 سپاس نامے پیش کیے جاتے ہیں، تقریبات میں مدعو کیا جاتا ہے، پھر شروع میں انٹرو کے نام پہ 5-6 منٹ تو لوگوں کے صرف اس میں لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، انہوں نے کہاں سے پڑھا، ان کا کیا تعلق ہے، اور خوش آمدیں اور چاپلوسیاں۔ اور حال کیا ان کا کہ یہ چاہتے ہیں ہماری تعریفیں ہوں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، تو ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، یعنی لوگوں کی باتوں کو اللہ کی بات نہ سمجھو۔ دیکھیے ایک انسان کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جب دوسرے لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی بات کو اللہ کی بات سمجھ لیتا ہے کہ اللہ بھی میری تعریفیں کر رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آیت 189، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے آسمانوں اور زمین کا سب کچھ، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان آیتوں کی روشنی میں ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے کہ ایک انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کیا وہ اپنی تعریف کر سکتا ہے، کرا سکتا ہے، یا پھر دوسرے اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو پہلی بات دیکھیے کہ سوچ کیا ہے کہ میں بڑا کام کروں اور میری تعریف ہو۔ جیسے عموماً آپ دیکھیے کہ آج کے دور کا ایک کلچر ہے، اور وہ کیا ہے کہ گینیس بکس میں اپنا ریکارڈ نام لکھنا، ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا، پہاڑ پہ چڑھ گئے، ہے نا؟ ایک تھوڑا سا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں بڑا کہیں، لوگ ہمیں مانیں، لوگ ہمیں ایڈمائر کریں، اکنالج کریں۔ اسلام کا یہ معیار نہیں ہے۔ پوری سیرت بار بار جا کے پڑھ لیجئے، آپ کو اللہ کے نبی اور صحابہ کا تعلق تعریف والا نہیں ملے گا۔ پہلی تعریف نبی نے ساتھیوں کی کی ہو، ماشاءاللہ میرے ساتھی، میرے فلاں فلاں، ہلکی پھلکی تعریف آپ کرتے تھے۔ کب کرتے تھے؟ جب واقعی کو ڈیزرو کرتا تھا اور پسندیدہ بھی ہے، ایڈمائر کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے۔ جیسے ایک موقع پہ ایک خاندان تھا، اس میں سے کچھ لوگوں نے صدقہ دیا، تو اللہ کے نبی نے جب وہ صدقے کا مال وصول کیا تو ساتھ ہی پھر ہاتھ اٹھا لیے اور اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنے درود بھیج، ان پہ رحمتیں کر، پورے خاندان کے لیے اپنے دعا کر دی۔ یہ تو ٹھیک ہے، اٹس گڈ، یہ ہونی چاہیے۔ وہ تعریف جس کے بعد اگلا اور زیادہ نیکی کرے، یہ تو پسندیدہ ہے موقع پہ، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے، اور منہ پہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سیرت پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے نبی عموماً جو لوگوں کی تعریفیں کرتے تھے نا، وہ ان کے پیچھے کرتے تھے۔ مثلاً ایک موقع پہ آپ نے کہا، اگر تم زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ شخص جو کل صبح صبح حرم میں سے گزرے گا، اس دروازے سے جو سب سے پہلے گزرے گا وہ جنتی ہے۔ 3 دن تک یہی بات ہوتی رہی، اور ایک شخص جب گزرے اور صحابہ میں سے ایک پھر ان کے پیچھے گیا۔ معروف واقعہ، ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ آپ پیچھے سے تعریف کرتے تھے۔ برائی کسی کی ہو تو اس کو خود بتا دیں، तारीफ करनी हो तो पीछे बताएं, और आप सोचते हैं ना कि अगले को पता नहीं चलेगा तो ये झूठ है। जिस तरह हवाओं के दोष पे फूलों के ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, पोलन्स पहुंच जाते हैं, इस तरह आप यहां बैठ के छुप के तारीफ करें किसी की, अगले तक पहुंच जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, सास है, बहू है। मैं कहती हूँ जहां आपको कोई कमी दिखती है आप अगले बंदे की को एडमायर करना शुरू कर दें। लेकिन ये बड़ा बुरा वजूद है कि इंसान करे कुछ ना और तारीफें चाहे। अल्लाह ताला कहते हैं ये अपने करतूतों पे खुश हैं, लोगों की नज़रों में सच समर के बन ठन के जब आते हैं और लोग इनको फिर फैंस के नाम पे बातें करते हैं तो ये बड़े खुश होते हैं। तो याद रखो कि ये तारीफ अच्छी है अगर अल्लाह की नज़रों में भी अच्छे हैं, वरना नहीं। बस दफ़ा यहूद के उलमा लोगों को नरम मसले बताते थे ताकि लोग हमें एडमायर करें, और अल्लाह के दीन को बदल देते थे। अल्लाह कहते ये भी ना करो, लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा अगर वो अल्लाह का कहा हुआ नहीं है। यहूद और मुनाफिकीन हर दफा जिहाद पे नहीं जाते थे, अब जब ये ना जाते तो क्या इस पे बाद में रोते, हाय नेकी का मौका चला गया। जूं ही अल्लाह के नबी साथियों को लेके जाते, बाद में अपनी महरूमी पे खुशियां मनाते, कितने अकलमंद हैं, शुक्र है चले गए, शुरू में शौत पे ही आ गए, शुक्र है हम तबूक में ना गए। तो गोया कि इनकी जिंदगी बहादुरी से, इखलास से, कुर्बानियों से बिल्कुल खाली थी, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखलिस सहाबा की तारीफें फरमाते तो इनके दिल में दो तरह के जज्बात आते। नंबर एक, जिनकी तारीफ होती उनसे ये हसद महसूस करते, हाँ बहुत बड़े हैं, और दूसरा जज्बा ये था कि हमारी भी तारीफ हो, हम भी ऐसे करें, दिस एंड दैट। लिहाजा ऐसे वक्त में फिर ये प्रोपेगंडे करते, क्या कहते, काम करने को तो हमारा भी बहुत दिल चाहता है लेकिन कोई हमसे फायदा ही नहीं लेता, हमें कोई एडमायर ही नहीं करता, हमारी खूबियों का तो किसी को पता ही नहीं चलता, कंसिडर ही नहीं करते। इस किस्म की नेगेटिव बातें करते, अल्लाह ने इनके दिल के बोल नबी तक रख दिए। कल भी थे किरदार ऐसे, आज भी हैं, पकाए कोई और नाम किसी और का, पकाए बहू और नाम बेटी का, ये बात तो सबको समझ आ गई है ना। तो देखिए ऐसी बातों से इंसान बहुत पीछे रहे। साहबा को फिक्र लग गई नायतों को सुनकर, अल्लाह के नबी हम तो किसी की तारीफ के लिए नहीं करते, सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, लोग फिर तारीफ करें तो कहा ये तो नकद नाम है, ये मोमिन की नकद इलामत है कि अल्लाह दुनिया में उसकी तारीफों को आम कर देता है, लोगों में उसकी खैर मारूफ हो जाती है, शर्त दे के कि आपके दिल में तमन्ना ना हो। ये तो अल्लाह ताला जैसे साइंस देते हैं ना, बारिश से पहले हवाएं चलती है, इस तरह मोमिन की तारीफ की भी हवाएं हैं। हमारे उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं कि आवाज़े खल्क नकारे खुदा, और हदीस बड़ी खूबसूरत है जिसका खुलासा बता सकती हूँ बस इस वक्त, कि जब अल्लाह ताला की किसी बंदे के अंदर कोई ऐसी खूबी होती है तो अल्लाह को उस बंदे से प्यार हो जाता है। फिर अल्लाह ताला जिब्राइल को बताते हैं कि फलां बंदा दुनिया में रहता है, मुझे उससे बड़ा प्यार है। तो जिब्राइल कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी उससे बड़ा प्यार है। फिर होते हुए आसमान के फरिश्ते पहले दूसरे सब, अच्छा फलां से अल्लाह भी प्यार करते हैं, अच्छा जिब्राइल भी करते हैं, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। फिर सारे आसमान वाले उससे प्यार करते हैं और उसके लिए मोहब्बत बढ़ जाती है, और वहां से होते हुए हदीस में आता है कि फिर दुनिया वाले फरिश्ते भी यही बातें कहते हैं, फरिश्ते फिर इंसानों के दिल में डालते हैं, और इस तरह उसके लिए दुनिया में और आसमानों में कबूलियत रख दी जाती है। तो ये अल्लाह को पता है। अब आप कहेंगे लोग गलत काम करते हैं तो फैन तो उनके भी बहुत सारे होते हैं, तो फर्क नोट कर लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं, ये देखिए कि आपको जो पसंद करते हैं उनका अपना क्या मुकाम है। देखिए ना, एक छोटी सी मिसाल है कि 10 क्लर्क मिल के एक शख्स की तारीफ करें, और उसी इदारे का बॉस अगर उसकी तारीफ करे, सदर या प्रेसिडेंट के किसी मुल्क का किसी को पसंद करे और उनके अंडर 10 किस्म के छोटे से अफसर उसके तारीफ करे, फर्क है ना। तो बहरहाल ये कि तारीफ सुन के भूलना नहीं है, कैसे मुझे पता चले, ये अब आप अपने लिए एक सवाल लिख के आगे चलते हैं। अगली आयत बहुत ही खूबसूरत है, और वो क्या कि मुझे कैसे पता चले कि मैं खुद पसंद हूँ, खुद तारीफों वाले। बल्कि एक मौके पे किसी ने मुझसे सवाल भी किया था कि ये कैसे पता चले कि सेल्फ प्रेजिंग है या इज्जत नफ्स है, कुछ इस किस्म का एक सवाल था किसी का आप लोगों में से। खुलासा क्या है, देखिए छोटी सी बात फिर शुरू से कर देती हूँ कि मोमिन जो होता है ना वो इनिशिएटिव होता है। जब नेकी का जज्बा आपके अपने दिल से उभरे, मुझे कुछ करना है, अल्लाह मुझे चुन ले, अल्लाह मुझसे करा, तो ये तो इंशाल्लाह आपके सेल्फ मोटिवेटेड होने की अलामत है। मोमिन सेल्फ मोटिवेटेड होता है। लेकिन एक दूसरा जज्बा, और वो क्या, कोई तारीफ करे तो आप भूल जाए कि हाँ अब करूंगी, बहुत तारीफ हुई, अब कल और काम करूंगी। तारीफ सुन के एक्सलरेट हो जाना और तनकीद सुन के काम छोड़ देना, ये है खुद पसंद इंसान की पहचान। खुद को पूछे क्या तारीफ सुन के काम करती हूँ। बाद सुबह मैंने देखा लोग चहक रहे होते हैं, जरा सी आप तनकीद कर दें, किसी मीटिंग में बैठे हो ऐसे पिचक के बैठ जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं मैंने नहीं बोलना, आप मेरी बात पता नहीं कैसी है। आप और मैं अपनी आखिरत बनाने के लिए कुछ कर लें और नेकियों के मौके ढूंढे और लाएं ढूंढ ढूंढ के कि मैंने क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे इर्द गिर्द क्या काम हो सकता है, मैं किस फील्ड में काम करूँ, मैं नेकी और क्या बढ़ाऊँ। ये तो रोज सबक याद करना है, तर्जमा भी याद करना है, टेस्ट भी, मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊँ, कोई डिक्शनरी लाऊँ, बात तो फिर बनती है ना। और अगर कभी धमकी दे के कह दिया जी होमवर्क कर लें, अच्छा जी आप कोई प्रोजेक्ट बना लें, कोई एक्टिविटी बना लें, तो बना ली, और किसी ने हो सकता है एडमिट ना ही किया हो किसी ने हमारी चीज़ को, तो कब क्या ज़रूरत है। तो तारीफ सुन के भूलना नहीं है और तनकीद सुन के काम से रुकना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। आप देखिए कि अल्लाह ताला का कलाम है ना, बंदे को धोता है, ऐसे धोता है कोई धब्बा ना रहे, कोई रखना ना रहे। अगर अल्लाह के नबी तारीफों के पुल बांधते सहाबा की, कोई एक कसीदा ही कह देते बदर के मैदान में लड़ने वालों के हक में, नहीं, इसके बरक्स आप देखिए कि मैदान खंदक में अल्लाह के नबी के अशआर मिलते हैं, अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशल आखिरा, ए अल्लाह ऐश तो सिर्फ आखरत का ऐश है, दुनिया का तो नहीं, तू इन मुहाजरीन और अंसार को बख्श दे। आपकी उंगली को जख्म लग गए, आपने शेर पढ़े, ऐ मेरी उंगली तू तो एक उंगली है जो अल्लाह के रास्ते में कटी और मुझसे पहले आगे पहुंच गई। तो मोटिवेशन दे लोगों को, लेकिन तारीफों के पुल ना बांधे। पता ही नहीं चलता कि बंदा तारीफ के लिए काम कर रहा है या अल्लाह के लिए कर रहा है। खुश हुआ करें अगर आपका कोई काम लोगों की नजरों में ना आए, पीछे बैठ के छुप छुपा के, वो कहते हैं ना बिहाइंड द कर्टन, कितने लोग पर्दे के पीछे बैठे होते हैं फिर कोई काम होता है। हमारी एक साथी थी, तो वो इस चीज में कि मैं माइक पे आके बोलती हूँ तो बहुत सारों को पता चल जाता है, मुझे ऐसा काम दे दें कि मैं पीछे करूँ, ये तकवा है। आप देखिए कि आप माइक पे आके बोलते हैं, बात करते हैं, जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूँ, कितनी उम्मीद है मेरे से गलतियां होने की, मेरा एक गलत बोला हुआ लफ्ज आप में से कितनों की सोच बदल देगा। लेकिन जिस बंदे ने इस माइक को सेट किया है या जिसने इस कमरे को खोला है, उसकी नीयत अच्छी है, मेरे गलत बोलने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जितना कोई सामने आता है ना उतना खतरे में, खुदा ना खास्ता कोई गन लेके इस रूम में आए ना, सबसे पहले गोली मेरे सीने पे चलेगी, आप तो बच जाएंगे क्योंकि आप नीचे बैठे हैं और आपकी बिहाइंड पे कुर्सियां भी हैं। तो जितना आप फ्रंट पे आते हैं ना उतने फंसते हैं, इसलिए बहुत सारे काम बंदा बिल्कुल कराहत के साथ करता है, इस सोच के साथ कि कोई तो नेकी ऐसी हो कि जो छुप जाए, कोई नेकी ऐसी हो इंसान कर ले। बास लोगों के अंदर कोई एक ही आदत होती है छोटी सी, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि वो उसके लिए दीन के लिए, उसके दीन के लिए फितना बन जाती है, वो दीन को छोड़ देता है, अपनी अना को नहीं तोड़ता। तो बात का खुलासा क्या है कि लोगों की तारीफ और तनकीद से बेनियाज होकर काम करना है, जितना मर्जी बचकर चले तनकीद तो होगी और जितनी मर्जी कोशिश कर लें तारीफ भी होगी। आप इन चीजों को बस हल्की नजर से देखें और आगे चल पड़े। हक बात करने वाले को कभी सब ठीक नहीं कहते, ये नहीं कहेंगे सब अच्छा, अल हक मुर्रा, हक कड़वा होता है। आप जो मर्जी करें लोग कुछ नहीं कहेंगे, जूं ही आप कुरान पढ़ने लगेंगे लोग कहेंगे नहीं हिफ्ज कर लो, कोर्स छोड़ दो, 500 दानों की तस्बीह ले लो, 1 लाख दफा वजीफे कर लो, लेकिन कुरान ना पढ़ो। क्यों? कि इस कुरान के बाद चेंजेस आते हैं और ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होते। कभी आपका दिल कोई तोड़े तनकीद करे तो क्या करे, नंबर एक सीरत में झांक के देख लें नबी ने क्या किया, दुआए ताइफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अंतर रब्बुल मुस्तदफीन, नफिल पढ़ लें, बहुत दिल चाहे रोजा रख लें, अल्लाह से लो लगा लें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके दिल को सुकून मिलेगा।
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.